नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का श्रोताओं स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल जी। राकेश, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत स्वागत।
धन्यवाद।
शुरूआत मुख्य समाचारों से। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला जारी। कल हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से शाम 7:30 बजे होगा। शंघाई तीरंदाजी विश्व कप चरण एक में भारतीय पुरुष और महिला कंपाउंड टीमें फाइनल में पहुंची, और कजाकिस्तान में एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए 50 मुक्केबाजों का चयन। शुरूआत आईपीएल के साथ। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच दिल्ली में मुकाबला खेला जा रहा है। गुजरात टाइटन्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, और ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 12वें ओवर में यानी 12 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट खोने के बाद 105 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स 8 मैच में 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर 8वें स्थान पर है, जबकि गुजरात टाइटन्स 8 मैच में 4 जीत के साथ 8 अंक लेकर 6वें स्थान पर है। कल हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से शाम 7:30 बजे होगा। राकेश, आज गुजरात टाइटन्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी है इस समय, और इसमें आज जहां दिल्ली की नजरें इस सत्र में लगातार दूसरी जीत पर रहेंगी, वहीं गुजरात अपनी पिछली शिकस्त का हिसाब चुकता करने का भरपूर प्रयास करेगा। आप क्या कहते हैं इस मैच के बारे में?
देखिए, बड़ा अच्छा फैसला था गुजरात ने जब टॉस जीत के दिल्ली को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारा, क्योंकि दिल्ली में जो पिछला मैच हुआ था उसमें ऋषभ पंत ने टॉस जीतने के बाद विपक्षी टीम को पहले बल्लेबाजी देकर बहुत गलत फैसला वो लग रहा था। लेकिन आज गुजरात टाइटन्स ने जिस तरह से दिल्ली पर प्रहार किए शुरुआत में ही, और तारीफ करने होगी संदीप वारियर की, जिस तरह से उन्होंने 3 विकेट चटका दिए थे, और देखिए 44 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे पावर प्ले के 6वें ओवर में, तो बहुत जबरदस्त झटके दिल्ली को दिए हैं। और नामी बल्लेबाज जैसे पृथ्वी शाह को आउट किया 11 रन, फ्रेजर मैकग्रुक जो कि इस समय बड़े तूफानी अंदाज में बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं वो 23 रन बना सके, वो भी वारियर का शिकार बने। फिर शाही होप को आउट किया, मतलब 9 रन पे 3 विकेट गिर गए 9 रन के अंतर पर। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ऋषभ पंत ने पारी को संवारा है और पटेल ने, वो एक काबिले तारीफ बात है कि भाई विकेटों के गिरने के सिलसिले को रोका है और 12 ओवर तक 105 रन बना लिए 3 विकेट।
अच्छा, प्रोजेक्टेड अगर स्कोर की बात करें तो कितना स्कोर आज रहने वाले की उम्मीद है?
देखिए, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, ये डिपेंड करता है कि भाई ये जोड़ी जो इस समय क्रीज पर टिकी हुई है ये किस तरीके से खेलती है, और ऋषभ पंत क्या एंड तक खेल पाते हैं कि नहीं। वो क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो आखिर के ओवर हैं उसमें अगर जो बल्लेबाज टिका हुआ है पिच पे वो अगर एंड तक जाता है, ऋषभ पंत अगर एंड तक खेलते हैं तो आप एक बड़े स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे विकेटों का सिलसिला शुरुआत में गिरा है
जी,
और वैसे ही अगर एंड में भी गिरते हैं, कई बार जल्दी जल्दी विकेटें गिरती हैं, तब बड़ा स्कोर बनने की नहीं है। लेकिन इसमें लग रहा है कि भाई ये 160-170 के बीच में जा सकता
रह सकता है। अच्छा राकेश, कल दिल्ली में बारिश हुई, तेज हवाएं चली, तो कल जो बारिश है उसका आज के मौसम पर कितना असर पड़ सकता है? पिच का मिजाज किस तरह का आंक रहे हैं आप?
देखिए, उसमें क्या है कि जो जमीन के नीचे जो नमी है ना
जी,
वो कहीं ना कहीं रहती रहती है, जब क्योंकि इस तरीके से जो वेदर है दिल्ली का या कई शहरों का क्या होता है कि आपको पता नहीं होता, तो ग्राउंड्समैन भी इसके ऊपर उहापोह में रहते हैं कि पिच को कितना पानी दें। अगर गर्मी रहेगी तो पिच को बांधने के लिए आपको थोड़ा सा पानी ज्यादा देना पड़ेगा, अगर आपने पानी कम दिया तो पिच की जो दरारें हैं वो आपको मुसीबत कर सकती हैं। तो ग्राउंड्समैन के लिए बड़ी उहापोह की स्थिति रहती है कि कैसा रहेगा, और ये रात के मैच होते हैं, शाम तक मौसम बदल जाता है ना, हवा में नमी रहती है और कई जगह ओस की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है, जो स्पिनर्स हैं बाद में बॉलिंग करते हैं तो उनको गेंद को ग्रिप करने में दिक्कत आती है। तो ये जो आजकल का जो ये मौसम है ना, ये बड़ा विकट होता है इसमें, क्योंकि जब बारिश भी होने लगे तो किस दिन बारिश होगी, हवा में कैसी नमी रहेगी, वो सब चीजें काफी फैक्टर काम करते हैं, और जो दोनों कप्तान होते हैं उनके लिए ये मतलब काफी कठिन निर्णय हो जाता है कि टॉस जीत के आप पहले बैटिंग करें या पहले फील्डिंग करें।
अच्छा, दिल्ली के दर्शक बड़े उत्साही हैं, अगर आप स्टेडियम में मैच देख रहे हैं तो उनका उत्साह देखते ही बनता है, तो क्या स्थानीय दर्शकों की मौजूदगी दिल्ली के लिए एक वरदान साबित हो सकती है?
देखिए वरदान तो नहीं, लेकिन हाँ एक सपोर्ट बड़ा होता है। और दिल्ली के दर्शक ऐसे हैं कि कई बार तो हम देखते हैं कि वो जो विपक्षी टीम के खिलाड़ी हैं उनके फैन हो जाते हैं, उनकी तारीफें करने लगते हैं। लेकिन मैं अभी वहीं सीधा ही अरुण जेटली स्टेडियम से आ रहा हूं, तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि 4-5 साल के बच्चे भी जो है ना वो दिखाई दे रहे हैं,
दिल्ली का जोश देखते बनता है,
माँ बाप उनके साथ लेकर आ रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी चीज है। और मैं आपको बताऊं बता साहब कि आईपीएल की बात हो रही है और मैं तमाम जो कॉलेजेस हैं उनमें क्रिकेट के मैचेस भी देख रहा हूं जाके। आज ही मैं अंबेडकर जो कॉलेज है वहां पर एक क्रिकेट का टूर्नामेंट शुरू हुआ, तो मैं वहां देख रहा था बच्चे जो हैं वो बिल्कुल आईपीएल स्टाइल में बल्लेबाजी करना चाहते हैं, जैसे स्टार उनके जिस तरीके के शॉट्स खेलते हैं तो वैसे शॉट्स वो लोग खेलते नजर आते हैं। तो वहां भी गेंदबाजों को बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि ऐसे ऐसे शॉट्स जो बल्लेबाज कॉलेज के खेल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज हैं जो खेलों की चीजें करा रहे हैं, जैसे क्रिकेट का मैंने बताया कि अंबेडकर स्टेडियम में हो रहा है, कल पीजीडीवी कॉलेज में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। तो खाली इंटर कॉलेज के ही मैचेस नहीं मिल रहे दिल्ली के बच्चों को, बल्कि अलग अलग कॉलेजेस उनके लिए क्रिकेट के टूर्नामेंट्स भी करा रहे हैं, कुछ कॉलेजेस हॉकी के करा रहे हैं, अभी खालसा कॉलेज ने हॉकी का बास्केटबॉल का कराया, श्यामलाल कॉलेज है वो अपना एक हॉकी का टूर्नामेंट कराता है। तो ये एक अच्छी चीज है कि कॉलेज लेवल पे भी अलग अलग खेल खिलाड़ियों को मिल रहे हैं
और खिलाड़ियों को तराशने का एक भरपूर मौका मिलता है। कहते हैं कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए।
बिल्कुल तराशने का देखिए उनको मौका भी, मंच तो मिले ना,
मंच मिले
और ये मंच मिल रहा है अच्छा। और आईपीएल के सीजन में जितने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं दिल्ली के अंदर उसमें जो शॉट्स देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से तेजी से रन बन रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है उन बच्चों को देख के।
अच्छा राकेश, लौटकर अपने मैच की तरफ आए, आज के मुकाबले की बात करें तो कहा ही जा रहा है कि ऋषभ पंत जो कि कप्तान है उनके लिए आज का मैच एक चुनौती की तरह है।
देखिए आईपीएल में हर मैच एक चुनौती की तरह होता है, खासतौर पर वो देखिए इंजरी के बाद वो वापसी कर रहे हैं, अभी तक ऋषभ पंत का वो रंग दिखाई नहीं दिया है जो कि जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो ये सब देखा जा रहा है कि क्या T20 का जो वर्ल्ड कप होना है उसके लिए उनको जगह उसमें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, या तमाम लोग जो है सिलेक्टर्स के लिए परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं इतनी जबरदस्त जो बल्लेबाजी कर रहे हैं हिंदुस्तान के बल्लेबाज, तो उनमें सिलेक्टरों के लिए एक थोड़ा सा शिद्दत भी रहेगा कि भाई टॉप ऑर्डर में कितनों को लें। शुभमन गिल है, हालांकि वो इतने सफल नहीं हो पा रहे हैं, अभी तक 2 ही अर्शतक उन्होंने बनाए, आज उनका 100वां मैच भी आईपीएल का, तो एक बड़ी उपलब्धि उनके साथ जुड़ रही है। युवा खिलाड़ी हैं, एकदम से 100 मैच खेल लेना T20 में ये बड़ी बात है। और क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप बिल्कुल सामने खड़ा है और आईपीएल के बाद एकदम टीम का सिलेक्शन और ये सब चीजें जब होंगी तो ये प्रदर्शन के ये जो मैच है ना इसमें सबका प्रदर्शन बड़ा मायने
नजरें रहेंगी इन पर भी। अच्छा राकेश, हालांकि अंक तालिका की तरफ देखें तो दिल्ली 8 मैच में 3 जीत और 5 हार के साथ 6 अंक लेकर 8वें स्थान पर है इस समय, जबकि गुजरात की अगर बात करें तो इतने ही मैच में 8 अंक है उसके और वो 6वें स्थान पर है। क्या दोनों ही टीमें अभी आईपीएल की मुख्य दौड़ में शामिल हम समझे?
देखिए अभी कुछ भी हो सकता है, अभी कोई भी टीम ऊपर आ सकती है क्योंकि काफी मैचेस पड़े हैं। और आईपीएल में हम देखते हैं कि टीम के साथ ना एक मोमेंटम चलता है कि जब टीमें कोई जीतती है तो लगातार 3-4 मैच जीत जाती हैं, हारती हैं तो लगातार 2-3 मैच हार जाती हैं, और प्लेयर्स भी जो रन बनाते हैं वो लगातार रन बनाते हैं। तो सारे प्लेयर जो है ना आईपीएल में मैं 2008 से देख रहा हूं कि मोमेंटम के ऊपर चलते हैं कि भाई जैसे प्लेयर्स की फॉर्म कहा जाता है वैसे टीम की भी फॉर्म होती है कि कई बार वो जीतते हैं, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स का जो मुझे लग रहा है कि अंतिम स्थान पर वो टीम है विराट कोहली जैसे धुरंधर खिलाड़ी के रहते हुए भी, वो बड़ी थोड़ी निराशाजनक कर रही है, उनकी फैन बेस में बहुत तेजी से कमी आ रही है।
अच्छा राकेश, कल के मैच पर भी एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, कल हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ होगा, इस मैच पर आपकी टिप्पणी?
देखिए मैच जो है सारे बड़े इंटरेस्टिंग होंगे और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से हर टीम जीतने के लिए जाती है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि इंडिविजुअल प्लेयर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। कल हमने देखा जो मैच हुआ उसमें कैसे चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा कि 200 प्लस का आप स्कोर बनाए और उसके बाद आप हार जाएं और आपका एक खिलाड़ी जो शतक बनाया तो दूसरे खिलाड़ी का शतक स्टॉइनिस का उनके ऊपर भारी पड़ गया, लेकिन दर्शकों को भरपूर आनंद मिला पूरे उस मैच के अंदर। तो जो ऋतुराज गायकवाड़ का शतक है कप्तान का वो रह गया और दूसरे का भारी पड़ गया उनके ऊपर।
अब ताजा समाचार की जानकारी देते हुए आपके लिए खेल की तरफ हम बढ़ेंगे, दिल्ली ने 3 विकेट खोने के बाद 122 रन बना दिए हैं 15वें ओवर में। और अब बात तीरंदाजी की। शंघाई तीरंदाजी विश्व कप चरण एक में आज भारतीय पुरुष और महिला कंपाउंड टीम में फाइनल में पहुंच गई हैं। अभिषेक वर्मा, प्रियांश और प्रथमेश फुगे की भारतीय पुरुष टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 235 के मुकाबले 233 रन से हरा दिया, जबकि ज्योति सुरेखा वैन्नम, अदिति गोपीचंद और परनीत कौर की महिला टीम ने एस्टोनिया को 235 के मुकाबले 230 से हराया। फाइनल में पुरुष टीम का मुकाबला नीदरलैंड से और महिला टीम का मुकाबला इटली से होगा और ये फाइनल मुकाबला 27 अप्रैल को खेला जाएगा। राकेश, हमारी दोनों ही टीमें विश्व कप के चरण एक के फाइनल में पहुंच गई हैं। हमारी आर्चरी की अगर हम बात करें तो किस दिशा में जा रही है?
देखिए, आर्चरी जो ये प्रदर्शन है उससे लगता है कि बहुत अच्छा जा रही है। पिछले साल भी पेरिस में हमारे पुरुष और महिला टीमों ने स्वर्ण पदक जीते थे, तो उस प्रदर्शन को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हमारे खिलाड़ी अभी इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि सेमीफाइनल बड़ा कठिन होता है, तो सेमीफाइनल की बाधा पार कर लिया और पुरुष टीम में जिस तरह से दक्षिण कोरिया को हराना, एक समय था कि सारे ये एरो और बोज जो है ये दक्षिण कोरिया बनाया करता था, वहां से आते थे और आते आते वो क्या करता था, अपने लिए तो बहुत आधुनिकतम रखता था और हमें जो देता था थोड़े हल्की क्वालिटी के देता था। तो ये एक बड़ी चीज थी, जब तक हमारे खिलाड़ी उनके अभ्यस्त होते थे तब तक वो और उसमें आधुनिक अपने प्रयोग करके बढ़िया अपने तैयार कर लेता था, तो हम उनके ऊपर बड़ा डिपेंड रहते थे। और कोरिया की टीम को हराना हमारे लिए बड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती थी पूरी दुनिया की,
हुआ करती थी,
तो उसको इन्होंने तोड़ा, यहां पर उसको हराया है। और आप देखिए मजेदार चीज, जो अंडर 20 के वर्ल्ड चैंपियन है प्रियांश
जी,
उनका बड़ा जबरदस्त कहना है कि भाई ये जो खिलाड़ी हैं जिनको हमने हराया, इनको हम यूट्यूब में देखा करते थे है, और आज अपने सामने कंपटीशन में उनको हराना, तो वो जो खुशी दे रहा है कि जिनके बारे में पढ़ते थे, सोशल मीडिया में देखते थे उनको परफॉर्म करते हुए, तो ये बड़ा गजब का प्रदर्शन है। और हमारे खिलाड़ी देखे कि वर्ल्ड चैंपियन भी हैं अंडर 21 में, जैसे प्रियांश हैं, प्रथमेश बालचंद फुगे हैं, वो बहुत जबरदस्त, फोर्थ सीड हमारे अभिषेक वर्मा है, बड़े अनुभवी खिलाड़ी हैं। ऐसे ही महिलाओं में भी देखिए, अदिति स्वामी हैं, एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट ज्योति सुरेखा हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और फाइनल में निश्चित रूप से सेमीफाइनल की फॉर्म को लेकर जाएंगे, प्रदर्शन जो भी हो, लेकिन हमारी तीरंदाजी लगातार तेजी से बढ़ रही है और ये नई पीढ़ी है जो आगे आ रही है। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि अनुभवी खिलाड़ी एक एक दो दो हैं दोनों टीमों में, लेकिन युवा खिलाड़ी ज्यादा हैं जो कि अंडर 18, अंडर 21 लेवल पे बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और वो देश की जो पताका है उसको लहरा रहे हैं।
और अब बात मुक्केबाजी की। कजाकिस्तान में 27 अप्रैल से 7 मई तक होने वाली एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रीति साई पवार सहित 50 मुक्केबाजों का चयन किया है। प्रीति साई के अलावा अल्फिया पठान, देविका घोरपड़े, विश्वनाथ सुरेश, प्राची के साथ साथ आकाश गोरखा और जुगनू भी अंडर 22 टीम का हिस्सा हैं। अंडर 22 और युवा दोनों प्रतियोगिताओं में 25-25 भारतीय मुक्केबाज भाग लेंगे। इस टूर्नामेंट में 24 से अधिक देशों के 400 से अधिक मुक्केबाज 25 भार वर्गों में पदकों के लिए मुकाबला करेंगे। राकेश, भारत को अपने किन मुक्केबाजों से बेहतर प्रदर्शन की आशा है?
देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये सारे मुक्केबाज बड़े टैलेंटेड हैं, प्रतिभाशाली हैं, तभी इनका टीम में चयन हुआ है। और बड़ी संख्या में 25-25 मुक्केबाज जब जाते हैं इस तरह से, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर इनको मिलता है, तो वो आगे के लिए, भविष्य के लिए हमारे जो है बेहतरीन मुक्केबाज तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। क्या होता है कि जब आप लगातार इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है और जो ये दबाव वाली चीजें आती हैं बड़े मैचों में, वो उनसे आप उभर जाते हैं। तो ये छोटी उम्र में इनको जो इंटरनेशनल एक्सपोजर देने का जो तरीका है, सरकार देखिए इतना पैसा सब खेलों में खर्च कर रही है, जो भी कैसा भी इंटरनेशनल एक्सपोजर मांगता है उसको दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि चाहे वो तीरंदाजी हो चाहे वो मुक्केबाजी हो, युवा पीढ़ी जो है हमारी तैयार हो रही है।
और अब कुश्ती की बात करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव को आज भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इससे खेल की विश्व संचालन संस्था द्वारा अनिवार्य की गई प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। आयोग के 7 स्थानों के लिए कुल 8 दावेदार दौड़ में थे और मतदान के बाद इनमें 7 सदस्यों को चुना गया जिन्होंने नरसिंह सिंह को अध्यक्ष पद के लिए चुना। इस पर टिप्पणी आपकी जरूर जाता, लेकिन क्योंकि समय अब इजाजत नहीं दे रहा है, राकेश एक सूचना दो लाइन की खबर और देते हैं। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का 5वां सत्र कल से 30 अप्रैल तक चंडीगढ़ के भारतीय वायुसेना के त्रिबेस रिपेयर डिपो BRD में आयोजित किया जाएगा। और श्रोताओं, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। राकेश, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
शुक्रिया।
और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।